ओम शांति।
भट्टी में आकर आप सभी का मन उमंग और उत्साह से भर ही चुका है। क्या जीवन में करना है, क्या मिस किया है, वो सब आप सभी को सूक्ष्मता से अंतर्मुखी होकर सोचने का मौका मिला। जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर श्रेष्ठ पुरुषार्थ में समाया हुआ है और हर एक आत्मा जो जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहती है, वैसे तो हम यही कहें कि हम सभी को, कुमारों को विशेष, जीवन में कुछ करने का साहस होना ही चाहिए। कुमार जीवन होकर इतने बड़े त्याग और बलिदान के बाद अगर कुछ करने की उमंग मन में नहीं है तो पुरुषार्थ जरूर ढीला चलता रहेगा। कुछ कर लें, चमत्कार करें, बाबा जैसा चाहता है हम ही करें, ऐसी उमंगें आप सबको मिली होंगी यहां। तो जो जिस लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है उसके लिए सबसे पहले यही देखना होता है कि अब तक जीवन में क्या क्या मिस किया है, कौन कौन सी बातें गलत समझी हैं, अपने दृष्टिकोण कैसे बनाए हैं अब तक, और यहां आकर अंतर्मुखी होकर ये सोचने का मौका मिलता है, क्लासेस के द्वारा ये समझ मिलती है कि जीवन को दिव्य करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने के साथ साथ कुछ प्रश्न लिखित में भी मिले हैं। प्रश्न, जैसा मैंने कहा, श्रेष्ठ स्थिति सभी प्रश्नों का उत्तर है। जहां श्रेष्ठ स्थिति है, समय पर आत्मा को खुद ही समझ में आ जाता है यहां क्या किया जाए। छोटे छोटे प्रश्न भी कईयों ने पूछे हैं, कम से कम उन सब का उत्तर तो यही है कि आप सभी को आज से, कईयों ने जीवन में ये दृष्टिकोण अपनाया भी होगा, अगर न अपनाया हो तो आज से अपना लें कि रोज एक बात रिवाइज करें, चाहे रोज रिवाइज करें या जीवन में समा लें उस बात को। एक संकल्प है वो कि हम यहां क्यों आए हैं, बस वही हमें करना है जिस लिए आए हैं, वो नहीं करना है जिस लिए नहीं आए। अपने से पूछें कि अब से पहले पिछले जन्मों में जब हम भगवान को बुलाते होंगे क्या कहते होंगे, तुम आओ, तुम एक बार आ जाओ, तुम हमें मिल जाओ, तो हम क्या क्या करेंगे। सभी ने कहा है, क्या क्या करने को कहा था, एक तो बलिहार जाएंगे, और भी कुछ करने को कहा था, तन मन धन सब तेरा, और क्या कहा था, आप जो कहेंगे हम वो ही करेंगे। बाबा याद दिलाता है मुरलियों में, एक मुरली बहुत सुंदर बाबा की साकार में जब थे, तब चली के बच्चे, तुमने मुझे जन्म जन्म बुलाया और कहा कि तुम एक बार आ जाओ, बस जैसा तुम कहोगे वैसा ही हम करेंगे। अब मैं आ गया हूं, अब करो जो मैं कहता हूं, अगर तुम्हें अपनी करनी थी तो मुझे क्यों बुलाया। बाबा ने बहुत अच्छी सारी मुरली में यही रिवाइज किया बार बार कि अगर तुम्हें मेरी नहीं माननी थी तो क्यों बुलाया मुझे। और क्या कहा था बाबा को, तुम आओ तो और बोलो, वारी तो हो गया, एक ही बात नहीं है, बहुत कुछ कहा होगा। और क्या कहा था, किसी ने और कुछ कहा था याद है, गुण नहीं है वो, क्या करेंगे, तुम ही संग खेलेंगे, तुम ही संग रहेंगे, तुम एक बार आओ फिर तुम्हें हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हर समय तुम्हारे ही साथ रहेंगे। तो बाबा याद दिलाते हैं, और भी बहुत कुछ कहा था, तुम आओगे तो हम पावन बनेंगे, तो याद दिलाते हैं बाबा कि अब जैसा मैं कहता हूं वही करो। और क्या वो कहता है ये हमें मालूम है। अब वो निमंत्रण देते हैं हमें कि मेरे साथ रहो। इस दुनिया में तो बहुत दिन रहे हो तुम, पूरे 5000 साल होने को आए हैं दुनिया में रहते रहते, धरती पर रहते रहते, अब मेरे पास आओ। बहुत प्यार भरा निमंत्रण बाबा रोज हम सबको देते हैं। तो हमें अपने से पूछना है बिल्कुल अंतर्मुखी होकर कि बाबा का इतना प्यार भरा निमंत्रण हम स्वीकार करते हैं, है स्वीकार? बहुत सूक्ष्म निमंत्रण है कि अब मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो। हम जानते हैं हमारी इच्छा है कि हम उसी के साथ रहें, परंतु क्यों नहीं रह पाते ये हमें अपने से देखना है। क्यों हम नहीं रहते? हरेक के व्यक्तिगत कारण है, सबके एक ही कारण नहीं होते, लेकिन उन कारणों को हटाया जा सकता है, सहज हटाया जा सकता है, बिना कठिनाइयों के। मन में अंदर उमंग हो कि अब ये जीवन बाबा के साथ बीते, अब उसके पास रहें, दिन में अधिक से अधिक 24 घंटे में अधिक समय उसके साथ बीते। अब ये आपको काम देते हैं, घर में बैठकर चिंतन करना कैसे हो। ये इच्छा है, पहले तो इच्छा कितनी शक्तिशाली है। जितनी शक्तिशाली इच्छा मनुष्य की होती है उतना ही कर्म में भी शक्ति आ जाती है। अगर शक्तिशाली इच्छा ही नहीं है, ऐसे ही कहते हैं सुन लिया है और कहते हैं, तो कर्म भी ढीले हो जाते हैं। वास्तव में अगर हम ये चाहते हैं, हम बहुत साल पहले 10-12 साल पहले अपने से भी पूछा करते थे और दूसरों से भी, जब कोई हमसे कहते थे कि भाई मैं इतने घंटे योग करना चाहता हूँ, होता नहीं है, हम पूछते थे आप अपने से पूछो कि क्या सचमुच तुम चाहते हो। अगर हम चाहते हैं और ऐसी कोई बाधा नहीं, हम न कर सकते हो। ठीक है, हम 100% चाहते हो, न हो 100, 80 जरूर होगा, जिसकी चाहना जितनी शक्तिशाली है। तो हरेक अपने से पूछे कि बाबा के साथ रहना मैं सचमुच चाहता हूँ। और ये साथ रहना कहा किसको जाता है? कई बार हम इसका थोड़ा गलत भी अर्थ समझ लेते हैं कि बाबा को याद करना, पता नहीं जो मैं कर रहा हूँ ये योग है या नहीं है, यथार्थ है या नहीं है, ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। तो बाबा के साथ को यथार्थ रूप से समझ लेना और साथ रहने के लिए ही दृढ़ संकल्प रखना, बस यही वो हमारा लक्ष्य हो जो हमने शुरू किया कि हमें ये याद रहे इस जीवन में कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। इसीलिए हम आए हैं कि ये संगम का थोड़ा सा दिन भगवान के साथ जीवन बीते, और किसी के साथ नहीं। और अगर हम उसके साथ रहेंगे, जैसे कल भी मैसेज में हम सब ने सुन लिया, उसके साथ रहने के बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ स्वतः और सहज ही हो जाता है। हम किस लिए आए? ये बात बहुत सारे व्यर्थ से हमें बचाएगी, क्योंकि इस जीवन में कई, विशेष करके कुमार, कई बातें बिना मतलब ही क्रिएट कर लेते हैं, मोल ले लेते हैं और फिर उनमें उलझ जाते हैं। सेवाओं के बारे में जो आप में से कुछ ने प्रश्न पूछे हैं, तो एक चीज, सेवा किसे कहते हैं? सेवा क्यों दी बाबा ने हम सबको? इसके बारे में छोटे छोटे प्रश्न भी कईयों ने पूछे हैं, पर सार रूप में हम ये जानते हैं कि सेवा हमें बल देती है। सेवा बहुत बड़ा बल है हमारे पुरुषार्थ के लिए। अगर सेवा हमें बल नहीं दे रही है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ चीज हम मिस कर रहे हैं, कहीं गलती कर रहे हैं। और सेवा का स्वरूप हमें समझना चाहिए सदैव, जिससे हम दूसरों को सुख दे सके। अगर हम बहुत कामकाज करने के बाद भी किसी को सुख नहीं दे सकते, नहीं दे पाते, तो हमें समझना चाहिए हमारी सेवा निरर्थक जा रही है। सेवा तभी बल देती है जब सेवा सुखदायक हो। इसीलिए सुखदायी सेवा से सेवा करने वाले को भी बहुत अधिक सुख और बल उसी समय प्राप्त हो जाता है। कुछ लोगों के प्रश्न है, कौन सी सेवा बड़ी, ज्ञान सुनाना, स्थूल काम करना, या किसी ने पूछा है हमें बहनों का भी कुछ काम करना पड़ता है, वो कोई भी सेवा करें, सबसे बड़ी चीज सेवा हमें संपूर्ण फल तब देगी जब सेवा के क्षेत्र में हमारी बेहद की भावना होगी, बेहद की वृत्ति। मान लो आपको किसी बहन के लिए, किसी भाई के लिए भी कुछ काम करना पड़ रहा है, आप ये सोच के परेशान न हो कि कहां मुझे विश्व सेवा करनी चाहिए और देखो मैं एक की सेवा में लगा हुआ हूं, ये सोचने की जरूरत नहीं। आप यही सोचो कि ये एक इसकी सेवा नहीं, ये बाबा के प्रति सेवा है, उसकी सेवा है, बेहद की सेवा है। सेवा केवल आधार है। जैसे हम देखते हैं जीवन में मनुष्य को कर्म तो करना है, सारा समय उसको कर्म करना है, आप लौकिक करते हैं उसमें भी वही मन बुद्धि और शारीरिक शक्तियों का प्रयोग होता है, अलौकिक सेवा में भी वही मन बुद्धि और शारीरिक शक्तियों का हमें उपयोग करना होता है। तो सारी बात हमारी भावनाओं पर है। अगर कोई बहुत वाचा की सेवा करता हो, उसका नाम भी हो, हर तरह से वो दूसरे को सेटिस्फाई करता हो, वीआईपी सेवा करता हो, लेकिन अगर मान लो उसके अंदर अहम है कि मैं करता हूं, मान की कामना है कि इसके बदले में मुझे मान मिले, कोई मुझे पूछे, मेरा नाम हो, फोटो छपे, अखबार में मेरे फोटो सबसे आगे हो, झंडा भी मेरे हाथ में हो, तो वो सेवा अधूरा फल देगी। भले ही सेवा की नाम की कामना से की तो उसका फल नाम मिल गया, नाम ही चाहिए था, नाम ही मिल गया, भविष्य फल नहीं चाहिए, वो समाप्त हो गया। सेवा जो गुप्त की जाती है, जो सुखदाई होती है, जो मैंपन के बिना की जाती है, बेहद की भावना से की जाती है, चाहे वो थोड़ी ही क्यों न हो, अधिक फल देने वाली होती है। सेवा के क्षेत्र में ये चार पांच बातें हमेशा ही ध्यान रखनी चाहिए। जैसे बाबा धन की सेवा के लिए कहते आए कि गरीब व्यक्ति 10 रुपए दे, साहूकार व्यक्ति 1000 दे तो बराबर होता है, वैसे ही हर तरह की सेवा में हमें मैंपन का पूर्णतया अभाव रखना है। मैंपन आए ही नहीं, हमारे पास था भी क्या, जो ज्ञान हमने दूसरों को दिया वो हमारे पास था कहाँ, हमने अच्छी तरह दूसरे को समझाया वो हम जानते कहाँ थे, हमने कुछ भी किया वो हमारा था ही नहीं, वो तो ईश्वरीय देन है और वो हम उसके बच्चों को बांट रहे हैं। इतनी ही भावना हमें सेवा जब भी करेंगे, सेवा योग युक्त बनाने का आधार बन जाएगी। जिन लोगों की ये शिकायत होती है कि हमें बहुत सेवाएं हैं स्थूल वाचा की सूक्ष्म, इसलिए योग का हम नहीं कर सकते, उससे स्पष्ट है कि उन्हें सेवा करने की अलौकिक विधि नहीं आती है। सेवा हमारे योग को बढ़ाए, आत्मा की आंतरिक अनुभूतियों को बढ़ाए, सुख और आनंद में वृद्धि करे, वो ही सेवा है। बाबा ने कई बार समझाया, इस बार भी समझाया, मुझे तो 74 से वो बात बाबा की एक लाइन मिली कि जो अलौकिक सेवा तुम्हारी स्थिति को गिरती कला में ले जाए वो सेवा सेवा नहीं है, जो सेवा तुम्हारी चढ़ती कला का आधार बने वही सेवा यथार्थ है, अर्थात वही यथार्थ विधि द्वारा की गई सेवा है। अगर हम सेवा कर रहे हैं, मान लो मेला कर रहे, सेवा कर रहे बहुत ज्यादा और आपस में टक्कर में भी आ रहे हैं, उससे हम जानते हैं क्या होता है, वातावरण बिगड़ जाता है, करने वालों में भी आत्मिक संतोष नहीं होता और वातावरण बोझिला होने के कारण जो भी वहां आते हैं उन पर भी उसका तुरंत प्रभाव पड़ता है। तो सेवाओं में टकराव भी न हो, यही सेवाओं की एक बहुत बड़ी सफलता है। और टकराव न हो इसके लिए आप क्या याद रखेंगे अपने मन में, बाबा करा रहा है मैंपन न हो। एक कौन सा गुण जो सदा आत्मा को टकराव से मुक्त रखता है? सरलता, सरल चित्त होना। कोई दूसरा टकराता है या हम टकराते हैं, दोनों बातें हो जाती हैं। उसमें अगर हम सरल चित्त होकर रहेंगे तो जल्दी अपने को मोल्ड कर लेंगे। कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ जाता है, पड़ सकता है कि हम तो टकराव में नहीं आते लेकिन कोई आत्मा हमारे साथ ऐसी आ जाती है जिसके स्वभाव संस्कार ऐसे जटिल होते हैं कि न चाहते भी कदम कदम पे टकराव होता है। अगर हमने अपने को मोड़ देने की विधि अच्छी तरह सीखी होगी, अभ्यास में लाई होगी, तो टकराव का जो बहुत बड़ा विघ्न है उससे हम मुक्त हो जाएंगे। और टकराव के साथ अब हम एक चीज पर और आए, जो भी कुछ लोगों के प्रश्न है अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप अपने जीवन में ध्यान दें कि मनुष्य सवेरे उठने से और सोने तक अनेक चीजों के प्रभाव में आता है। जो कुछ वो देखता है, जो कुछ सुनता है, जो कुछ बोलता है या दूसरे उससे जो कुछ व्यवहार करते हैं उससे कुछ कर्म होता है या दूसरों के कर्म होते हैं, संपर्क संबंध में आते हुए अनेक बातें सारा दिन में मनुष्य के मन को, विचारों को प्रभावित करती है। जैसे आप देखें, अगर आप सवेरे से ये सोच के चले हों कि आज मैं बाबा की ये बात याद रखूंगा, आज मैं इस चीज का सारा दिन अभ्यास करूंगा, तो आप क्या पाएंगे? मान लो क्लास में ही आप ये बात सोचकर बाहर निकले, बाहर जाते जैसे बाहर को देखेंगे और बाहर के दृश्यों का प्रभाव आपके ऊपर आएगा और आप वहीं से वो बात भूलना शुरू कर देंगे। फिर आगे गए, किसी ने दूसरी बात की, उसका प्रभाव आ गया, फिर और आगे गए, तीसरी बात का प्रभाव, और इस तरह सारा दिन आत्मा भिन्न भिन्न प्रभावों से प्रभावित होते होते अपनी उस मूल बात को लंबे समय तक भूल जाती है। तो ये अभ्यास डालने की जरूरत है कि प्रभाव को तुरंत कैसे समाप्त किया जाए। प्रभाव तो है ही, कलयुग का भी प्रभाव है, अनेक तरह की अपवित्रता का, गंदे वातावरण का, कलयुग का तमोप्रधान काम काज सबका प्रभाव मनुष्य के ऊपर आ रहा है। लेकिन जैसे आपने कहीं कंप्यूटर की कार्य विधि देखी हो तो कंप्यूटर में एक चीज सेट की कर दी जाती है और उस अनुसार वो आप ही काम करता रहता है। फिर अगर बीच बीच में उससे कुछ काम लेना होता है तो उसके उस प्रभाव को रोक के वो काम उससे ले लिया जाता है और जब वो काम खत्म होता है फिर वो अपने पूर्ववत प्रभाव को चालू कर देता है। तो हमें इतनी दृढ़ता और अभ्यास की जरूरत है और इस अभ्यास में हमें काम आता है सबसे अधिक बाबा का ज्ञान। ज्ञान का प्रयोग प्रभावों को समाप्त करने के लिए किया जाए। मान लो आपको कोई, आप यहाँ से चले ये सोच के कि आज मैं ये समझूंगा कि मैं फरिश्ता हूँ। कोई आया, किसी ने आपको बात सुनाई कि देखा आपने सुना फलाने भाई ने ऐसा ऐसा कर दिया है। अब उसको सुनते ही आपके मन में कुछ प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई। अब यहाँ आपको ज्ञान के प्रयोग की आवश्यकता होती है कि उस टाइम वो बातें या तो सुनी न जाएं, लेकिन अगर सुन ली तो उसको शुभ भावनाओं के द्वारा या जो भी उस संबंध में बाबा ने ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें बताई हैं उनके प्रयोग के द्वारा जल्दी से जल्दी समाप्त करके फिर उस स्थिति को पकड़ लेना कि मैं फरिश्ता हूं। या ये याद रखना, मान लो आपने सुना कहीं, आप यहाँ से चले और सुना कि आपका फलाना रिलेटिव, आपकी माँ या फ्रेंड बहुत बीमार हो गए हैं। बीमार होते ही आपके मन में चिंतन चलने लगा। अब चिंतन चलाना या बाबा के ज्ञान का प्रयोग करना, उस टाइम इतना ही अगर हमें अभ्यास होगा तो हम सहज ही उस प्रभाव से मुक्त होंगे। सुनते ही हम सोचने लगते हैं अब क्या करूं मैं, जल्दी जाऊं, पता नहीं मां की तबीयत बहुत खराब हो गई हो, ऐसा ना हो गया हो, वैसा ना। और बाबा ने क्या कहा कि तुरंत उस आत्मा को शुभ भावनाओं का और शक्तियों का दान देना प्रारंभ करो। आगे जो कुछ करना है वो आगे करना, लेकिन तत्काल उसके निगेटिव प्रभाव से मुक्त रहने के लिए तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या हैं उसको पूरा करना प्रारंभ करो। कोई बात सुनकर, देखकर, व्यवहार देखकर, मेरी जिम्मेदारी और मेरा कर्तव्य क्या है, अगर ये एक ही लाइन हम अपने पास अपनी स्मृति में समा लें तो बहुत सारे प्रभावों से हम मुक्त हो जाए। मान लो आपकी चलते चलते दिन में किसी ने इंसल्ट की, मजाक किया। मान लो आप चल रहे बहुत अच्छे, आप ऑफिस में गए, किसी ने एक बहुत ही अनादर सूचक शब्दों में आप पर कोई टीका टिप्पणी की, आपने सुना और आप पे प्रभाव आया। लेकिन आपको अगर ये याद रहे कि इस टाइम मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है अडोल रहना और इस आत्मा के लिए भी श्रेष्ठ भावनाएं देना, अगर ये याद रहेगा तो ये संकल्प नहीं चलेगा कि इसने ऐसा क्यों कहा मुझे, ये रोज ऐसा ही मुझे कहते हैं, मैं भी एक दिन इनको दिखाऊंगा, ऐसा संकल्प नहीं चलेगा। बल्कि अपने कर्तव्य की स्मृति उस चीज से मुक्त कर देगी। तो कुमार जीवन ऐसे तो सभी के लिए आवश्यक है। उस दिन भी हमने एक बात सुनाई, आज दो में कर दें उसको, आपने सुनी बहुत सारी बातें कि ब्राह्मणों में अगर हम, जैसे हम सब की कामना है कि इस अंतिम समय में और थोड़े समय में सब कुछ प्राप्त कर लें, तो ब्राह्मणों की अगर बहुत बड़ी मिसिंग है वो है अभ्यास, अभ्यास की कमी। जैसे उस दिन हमें एक बात एक लाइन में सुनाई कि एक छोटा मोटा सन्यासी किसी एक मात्र मंत्र के अभ्यास से 10-20 साल एक ही मंत्र का इतना अभ्यास कर लेता है कि सिद्ध पुरुष बन जाता है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उसका नाम हो जाता है, उसके जीवन में भी दिव्यता आ जाती है। तो अगर एक झूठे और बिना किसी अर्थ के मंत्र के द्वारा इतनी बड़ी प्राप्ति है, तो अपना ज्ञान और योग, अपना योग अभ्यास जो डायरेक्ट ऑलमाइटी से है, अगर हम उसका अभ्यास बढ़ा दें तो क्या थोड़े समय में हम सिद्धि स्वरूप नहीं हो सकते। तो हमें ये बात अंडरलाइन कर लेनी चाहिए, अगर हमें कुछ जल्दी ही प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प है तो अभ्यास सबसे बड़ी चीज है। अभ्यास के द्वारा, जैसे कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, या हिंदी में कहते हैं ना, वो पहले जो गांव में कुएं होते थे और उस पे रस्सी से पानी खींचा जाता था तो पत्थर की सिल भी घिस घिस के एक एक इंच गड्ढा हो जाता था, करत करत अभ्यास के जड़ूमति होत सुजान। तो कितनी बड़ी चीज रस्सी, जो ये पत्थर के एक वार से कट सकती है, उसने पत्थर को काट दिया 10 साल जब उस पे रस्सियां घिसी गई। तो इतना जबरदस्त योग, भगवान से कॉन्टेक्ट, उससे जुड़े रहना, उसके साथ रहना, अगर हम इसका थोड़ी तत्परता से उतना ही इसका महत्व समझते हुए अभ्यास कर दें, तो वास्तव में जो हम चाहते हैं, जो हमारी आंतरिक अभिलाषा है अपने मन में, वो जरूर पूर्ण हो सकती है। और दूसरी चीज, ज्ञान के पॉइंट्स को इस तरह प्रयोग में लाना, ज्ञान का अभ्यास। ज्ञान की अगर आपको ज्यादा बात न याद रहती हो तो रोज एक ही बात ले लो, मुरली रोज सुनते हैं अव्यक्त मुरली से ले लो, और अपने को उस एक बात के प्रभाव में रखने की प्रैक्टिस करो। कैसे? कि दिन में कई बार उसको याद करो, केवल ये पहला कदम है, एक पॉइंट ली और उसको याद किया, धीरे धीरे आप देखेंगे उस पॉइंट का कितना अधिक प्रभाव स्थिति पर पड़ेगा। क्योंकि हम सबसे पहले जरूरत इस बात की महसूस करते हैं कि आत्मा को ज्ञान स्वरूप रहना चाहिए। जब हम ज्ञान भूल जाते हैं तो ज्ञान स्वरूप भी नहीं रहते, फिर अनेक प्रभावों के स्वरूप बन जाते हैं। तो ज्ञान स्वरूप रहने के लिए ज्ञान की पॉइंट्स का प्रयोग, और योग स्वरूप होने के लिए योग का इतनी मेहनत से अभ्यास, फिर कोई माया की शक्ति नहीं जो हमें रोक सके। चाहे पवित्रता के बारे में कईयों ने प्रश्न किए हैं, पवित्रता भी ऐसा ही सब्जेक्ट है, इसको दबाकर संपन्न नहीं किया जा सकता। दबा के तो हम सब ने देख लिया है, जन्म जन्म सन्यासियों ने, अनेक साधकों ने अनेक बाह्य साधनों के द्वारा पवित्रता को अपनाया, लेकिन अपनी पवित्रता का आधार ज्ञान स्वरूप होना और योग स्वरूप होना ही है। जितना जितना ज्ञान स्वरूप हम होंगे, बाह्य वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं रहेगा। जितना जितना योग अभ्यास हमारा होगा, आत्मा बाबा के साथ होगी, ऑटोमेटिक पवित्र होती ही जाएगी। तो अपवित्रता के बारे में और ज्यादा प्रश्नों को समाप्त करके सभी कुमारों को एक लक्ष्य अपने जीवन में बना लेना चाहिए कि अब अंतिम समय में अच्छे अनुभवों के लिए, वैसे तो बाबा ने योग के लिए हमें एक सीमा दी हुई है 8 घंटे की, और आप में से भी अनुभव होगा कुछ को, जिनको अनुभव है वो जानते हैं कि इस जीवन का सच्चा आनंद, परम आनंद जिसको कहते हैं, वो 8 घंटे योग करने के बाद ही प्राप्त होता है। विकर्माजीत स्थिति, संकल्पों में बल, पवित्रता की एक नेचुरल स्थिति, सर्व प्राप्तियों का अनुभव, ऐसी योग की स्थिति से ही प्राप्त होता है। अगर किसी को बहुत ऊंचा जाना हो तो उसको तो अपनी प्लानिंग करनी चाहिए 8 घंटे तक योग पहुंचाने की, फिर भी कम से कम 4 घंटे तक तो पहुंचाना ही चाहिए। हरेक को अगर अच्छे अनुभव करने हैं तो ऐसी अपनी प्लानिंग करें कि योग अभ्यास कम से कम 4 घंटे रहे। 8 घंटे हो तो बहुत सुंदर, नहीं सारे दिन में बैठकर भी नहीं, कर्मों में बैठकर, कर्मों में सारा दिन। और योग को आप सरल रूप से इसी तरह समझे, आपने बहुत क्लासेस तो सुनी ली हैं कि इस देह और देह की दुनिया के संकल्पों से परे रहना, बाबा की याद चाहे बिंदु रूप में हो, रूरिहान हो, चाहे बाबा ने अब अंतिम समय में जो और अभ्यास करने को कहे हैं, जैसे स्वदर्शन चक्र घुमाना, ऐसा जैसे बाबा ने कहा फरिश्ता सो देवता स्वरूप का अभ्यास, ऐसे रीडी होने का अभ्यास, अपनी संपूर्ण स्थिति का अभ्यास, अर्थात हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी स्मृति देह और देह के संकल्पों से दूर हो, बाबा के पास हो, ऐसा 8 घंटे का अभ्यास। और जीवन में इसी के साथ एक बात और अंडरलाइन कर लेनी है कि जो चीज आपसे नहीं हो रही है उसको न करो। कई लोग ऐसा समझ बैठे हैं कि बिंदु रूप ही योग है और वो होता नहीं है, तो खेचातान कर रहे हैं। 5 साल हो गए कि योग ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि परम धाम में बुद्धि जाती नहीं, मैं क्या करूं? एकाग्रता सोचता हूं, सिर दर्द होता है, मैं क्या करूं? आप में से भी कईयों ने पूछा है कि जब भी सोचते हैं तो थकान महसूस होती है, मानसिक थकान होती है, सिर दर्द होने लगता है। तो योग के और भी बहुत सारे बाबा ने साधन बताए। कई नए भाई थे, वो ये भी पूछते हैं कि बाबा बाबा अंदर सोचा जाए, बाबा बाबा सोचा जाए। तो सोचने की जरूरत नहीं है, बाबा कहने की तो जरूरत है ही नहीं, लेकिन बाबा बाबा का मंत्र रटने की भी जरूरत नहीं। लेकिन जैसे बाबा ने सहज रूप से भी बताए हैं कि बाबा को अपने साथ समझो, ये भी योग है। हम क्यों न समझें कि ये योग है? योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा। वो जरूरी नहीं कि परमात्मा परम धाम में ही हो, जबकि बाबा ने कहा है कि जहां तुम मुझे याद करोगे वहां मैं उपस्थित हूं, कहा है ना बाबा ने, अव्यक्त मुरलीम बाबा ने अच्छी तरह अंडरलाइन की है, जहां मुझे याद किया वहां मैं उपस्थित। एक ऐसे ही आपको एक छोटी सी बात सुनाए, एक बहन अंग्रेज, उसका ब्रेन बहुत कमजोर था, 5-7 साल से ज्ञान में चलते, पिछले साल आई कि जब भी योग करती हूँ सिर दर्द होता है, परम धाम की जैसे सोचूंगी कि बाबा परम धाम में और सिर भारी, अब मैं क्या करूं? योगी तो बनना है, लेकिन कठिनाई ये है। हमने उसको एक सीधी सी बात बताई कि आप क्यों सोचते हो बाबा परम धाम में, आप ये सोचो आपके सामने 1 फुट पे ही है, दूर भी नहीं, और करो बाबा को याद जैसे चाहे, एकाग्रता करो या रूरियान करो। और जब अगली बार वो आई तो उसका चेहरा ही बदला हुआ था, अब उसका योग परम धाम में भी लगने लगा, क्योंकि एक बार स्थिरता आई, स्थिरता से ब्रेन की शक्ति भी बढ़ जाती है, ब्रेन भी शक्तिशाली हो गया और अब जैसे चाहे वो योग कर सकती है। तो हम जो चीज हमारे लिए कठिन है उसको ही पकड़ के न लटके रहें, जो चीज हमारे लिए सरल हो, हरेक को अपने पुरुषार्थ का, अपनी क्षमताओं का, अपनी योग्यताओं का ज्ञान है, जो चीज दूसरा व्यक्ति कर रहा है वो ही मैं करूं, ये संभव नहीं होता। हर एक अपना अपना व्यक्तिगत मार्ग अपना सकता है, बाबा ने इसलिए अनेक रास्ते बताए हैं। तो जो सहज पुरुषार्थ का तरीका है उसको लेकर आगे बढ़ो तो जो ऊंची स्थिति है वो भी सहज अनुभव में आने लगेंगी। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न किया है कुछ एडवांस पार्टी के लिए, सतयुग कब से कहा जाता है, इस बीच में परिवर्तन कैसे होता है। बहुत संक्षेप में, आप सभी लोग सुनते हैं बाबा की मुरलियों में कि संगम युग की आयु 100 वर्ष है। कब से कब तक? जब से बाबा का कार्य शुरू हुआ और जब तक श्री लक्ष्मी और नारायण गद्दी पर बैठे। ये सब बातें जो मैं आपके सामने अब रख रहा हूं संक्षेप में, ये बाबा ने चाहे साकार में बताई हैं चाहे अव्यक्त में, मैं अपना चिंतन नहीं बताता हूं, अभी समय इतना नहीं है। तो इससे पहले हम देखते हैं कि 50 साल पूरे हो रहे हैं, हमारे पुरुषार्थ का भी इन बातों से गहरा संबंध है और हमें ये जानकारी स्पष्ट हो ये बात भी उतनी ही जरूरी है। 50 साल तो पूरे हो रहे हैं, अगले 50 सालों में विनाश और स्थापना, स्थापना अर्थात अब जानते हैं महल भी बनेंगे, देवताओं का जन्म भी होगा, वो बड़े भी होंगे, उससे पहले यहाँ भयंकर विनाश और विनाश के साथ प्रत्यक्षता, जय जयकार हाहाकार और संसार का ये स्थूल निर्माण और देवताओं का यहाँ पर आना, इतने सब काम और वो बड़े होकर गद्दी तक पहुंचे, इतने सब काम इन 50 सालों में होने वाले हैं। अब दो तीन चीजें हैं केवल इसके बारे में जानने की, एक तो देवताओं को राजाई कैसे मिलती है और एक देवताओं का जन्म कैसे हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा बड़ी बात है, इम्पोर्टेंट बात है कि कलयुग में जो सिस्टम चल रहा है भोग बल का, उससे योग बल एकदम से कैसे शुरू होगा, जादू से तो कुछ नहीं होता है, सब कुछ एक सिस्टम से परिवर्तित होगा। तो इन सब के लिए ही, एक तो रहे हुए 50 साल, तो प्रश्न था ये किसी का कि श्री कृष्ण के जन्म से क्या सतयुग कहेंगे, नहीं, श्री कृष्ण का जन्म कहा जाएगा संगम में हुआ और जब वो गद्दी पर बैठा, क्योंकि सतयुग उस समय को कहा जाता है जब कलयुग का कोई भी मनुष्य यहाँ जीवित न हो, केवल वो ही हो जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पावन है। लेकिन आत्मा और शरीर पावन होने में भी पीछे एक रहस्य हो जाता है, एक तो हम जानते हैं कि देवताओं के शरीर और आत्मा पावन है और योग बल से जन्म होना, इसके लिए शरीर और आत्मा दोनों का पावन होना जरूरी है। लेकिन देवताओं के माँ बाप का शरीर पावन कैसे बना, क्योंकि देवताओं के माँ बाप वो सब आत्माएं हैं जो इस समय ब्राह्मण परिवार से शरीर छोड़कर जा रहे हैं, जिनको हम एडवांस पार्टी कहते हैं, जो जाकर देवताओं को जन्म देंगे। अब देवताओं को जन्म देने वाले माँ बाप के शरीर, चलो आत्मा तो पावन हुई यहाँ जितनी भी हुई, लेकिन उनका शरीर कैसे पावन होगा, क्योंकि जब तक उनका शरीर पावन न हो तो देवताओं को जन्म नहीं दे सकते, क्योंकि पावन शरीर से ही पावन शरीर का जन्म होगा। अब ये जो आत्माएं यहाँ से जा रही है, मान लो कोई भी ब्राह्मण आत्मा शरीर छोड़ती है और उसको गर्भ में जाना है, अब जिसके घर जा रही है वो सब पतित हैं, माना उनके शरीर तमो प्रधान तत्वों के बने हुए हैं, पतित हैं। लेकिन बाबा ने एक सिद्धांत बता दिया कि गर्भ में ही इन आत्माओं का शरीर पावन हो जाएगा। उसके तीनों तरीके होंगे, एक हम सब का योग जिसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं उसके द्वारा, एक उस आत्मा ने जो अपना योग कमाया जो उसके पवित्र वाइब्रेशंस हैं उसके द्वारा, और तीसरा बाबा की मदद के द्वारा, बाबा भी ऊपर से उनके गर्भ को पावन करने के लिए प्रकाश वाइब्रेशंस देते हैं। इन तीनों के द्वारा इन आत्माओं के शरीर पतित गर्भ में भी पावन हो जाते हैं, और इसलिए जब ये बच्चे बनते हैं बड़े होते हैं तो इनका शरीर पावन ही रहता है और उनके द्वारा ही देवताओं का जन्म होता है। तो एक तो ये कार्य जो बाबा कहते हैं एडवांस पार्टी, जिसके लिए बाबा ने बोला पिछले साल कि तुम बच्चों को मनसा सहयोग एडवांस पार्टी को भी देना है। एडवांस पार्टी जो जा रही है शरीर छोड़कर आत्माएं, उनके शरीरों को पावन करने का, और दूसरा जहां वो हैं, क्योंकि वहां वो तमो प्रधान वातावरण में है, कोई ज्ञानियों योगियों के घर में तो नहीं है, उनको उस वातावरण से मुक्त रखने का बल, यानी योग बल हमारा इतने वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाए कि कलयुग के दूषित वातावरण में रहते हुए भी वो आत्माएं उस दूषितता के प्रभाव से मुक्त रह सके। दूसरी एडवांस पार्टी का काम है भारत में राजा स्थापित करना। जो संक्षेप में हम आपको बताएं, जो कुछ आज तक बाबा ने सुनाया है, तो ये काम है ममा पार्टी का। ममा और उसके साथ लगभग 8 आत्माएं हैं जो नेपाल में हैं, और उनके द्वारा भारत में इस प्रजातंत्र की समाप्ति के बाद राज्य की स्थापना हो जाएगी। इसके लिए बाबा ने थोड़ा सा अब तक केवल यही बताया है कि प्रजातंत्र जो है ये धीरे धीरे फेलियोर हो जाएगा, जैसे हम देख ही रहे हैं चार ओर हंगामे, आतंकवाद, हरेक की अपनी अपनी प्रांतों की मांग, और चारों तरफ सारे संसार में भी जिस तरह स्थिति होती जा रही है, भारत में वो और प्रकोप के रूप में हो जाएगी, और ये राज मिलिट्री के हाथ में जाएगा, और फिर मिलिट्री उस चीज को जब दबाएगी, आतंकवाद को या और सब जो घोर घमसान होगा, तो उसमें बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा हाहाकार होगा, और कुछ समय बाद वो मिलिट्री के कमांडर्स भी मतलब उदास हो जाएंगे, निराश होंगे कि अब क्या करें, जैसे क्योंकि उस टाइम प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत होंगी, और तामसिकता का अंत होने के कारण मनुष्य में वही उग्रता होगी कि वो किसी भी कानून का जैसे पालन नहीं करना चाहेगा, तो मार दिए जाएंगे सब लोग। तो उससे निराश होकर मिलिट्री कमांडर्स चाहेंगे कि ये राज सत्ता हम किसी को सौंप दें, अब ये हमारे बस की नहीं है। तो बाबा ने ये बताई थी बात कि उसी समय भारत में एक व्यक्ति का नाम बहुत प्रसिद्ध हो चुका होगा। उस व्यक्ति अब कौन उसको प्रसिद्ध करेगा, इसके पीछे ही ये रहस्य है। बाबा ने ही बताया था कि जैसे क्राइस्ट के जन्म से पहले आपने सुना हो उन 3 विद्वानों को साक्षात्कार जैसा हुआ था कि फलानी जगह ऐसी कोई महान आत्मा आ रही है, उसके दर्शन के लिए वो गए थे। बाबा ने कहा ऐसे कई लोगों को यहाँ साक्षात्कार होंगे उसके लिए, और ऐसा एक वातावरण जैसा बनेगा कि सब लोग ये मानेंगे कि ये एक व्यक्ति ही बहुत महान है, योग्य है, और वो सब मिलकर उस एक व्यक्ति को राज सौंप देंगे। वहां से राजा ही शुरू हो जाएगी, और ये इस एक व्यक्ति को इस तरह प्रसिद्ध करने का काम करेगी ममा पार्टी, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है एकदम से राजा स्थापित होना और इस तरह होना, जबकि आज इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आज की संसार में जो प्रणाली चल रही है, डेमोक्रेसी या जो कुछ भी चलता है सारे संसार में, कहीं भी राजा ही होगी फिर से ऐसी किसी की कल्पना नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम जो ममा पार्टी के द्वारा गुप्त रूप से होगा, और क्या इसमें रहस्य है वो बाबा आगे जाकर प्रत्यक्ष करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये दो काम, एक भारत में राजा स्थापित करना, तो जब उस एक व्यक्ति को राज मिलेगा उसके घर में देवताओं का जन्म होगा, डेफिनेटली श्री कृष्ण का ही होना चाहिए, और वो राजा ही उससे श्री कृष्ण को चली जाएगी, और दूसरी पार्टी योग बल से जन्म देने का कार्य करेगी। अब ये दो काम, और तीसरा काम विनाश का, महलों के निर्माण का और इन तत्वों के प्योरिफिकेशन का, जो भी काम होता है वास्तव में सूक्ष्म रूप से अगर हम देखें हम सबके योग बल के द्वारा, जैसे बाबा ने पहले कई बार ये बात समझाई है कि शंकर के द्वारा विनाश जो प्रसिद्ध है, तो शंकर तुम्हारी तपस्वी स्वरूप की ही स्थिति है, तुम्हारे तपस्वी स्वरूप के द्वारा जिसको बाबा ज्वाला रूप स्थिति भी कहते आए हैं, उसके द्वारा वैज्ञानिकों को और विनाश करने वाले जो और पॉलिटिशियंस होंगे उन सबको ऐसी प्रेरणाएं ही प्राप्त होंगी कि जिससे वो विनाश का कार्य शुरू करेंगे, और प्राकृतिक आपदाएं भी वास्तव में हमारे योग बल की ही एक करामात है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं का अर्थ ही है दूसरे शब्दों में धरती का और तत्वों का प्योरिफिकेशन। अब हैं इन तत्वों में और धरती में इम्प्योर वाइब्रेशंस। तो हम सब आत्माएं जितना जितना अधिक पवित्र बनती जाती हैं, हमारे पवित्र वाइब्रेशंस मानो धरती से और तत्वों से इम्प्योर वाइब्रेशंस को बाहर निकाल फेंकना चाहते हैं, और उसी का दूसरा स्वरूप है प्राकृतिक आपदाएं। तो हम सब के योग बल से, हम इन बातों की डिटेल में अभी नहीं जाते हैं, इस तरह हमारे योग बल से आने वाले समय में ये रहा हुआ स्थापना का कार्य और इस तरह विनाश का कार्य पूर्ण हो जाएगा। इन हीरे मोतियों के लिए बाबा ने थोड़ी थोड़ी बातें कई बार बताई हैं हम सबको, कि जब धरती ये प्राकृतिक प्रकोप होंगे और समुद्र में इस तरह के ज्वार भाटे होंगे तो बहुत सारा समुद्र का पानी भारत की धरती पर आ जाएगा। और जानते ही हैं कि सागर के तल में ऐसे हीरे मोती जवाहरात बहुत सारे हैं, तो वो धरती पर आ जाएंगे और जब पानी पीछे हटेगा तो वो सारे इस लैंड पर बिखरे पड़े होंगे। तो जब यहाँ होंगे हीरे मोती तो फिर महल किसके बनाएंगे, कौन पत्थरों को इकट्ठा करेगा, पत्थर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, यही सब चीजें ज्यादा होंगी। तो प्रयोग इनका ही कर लिया जाएगा, और टेक्नोलॉजी और जो आजकल विज्ञान के साधन बहुत रिफाइन हो रहे हैं, मकान बनाने के भी साधन बहुत रिफाइन होते जा रहे हैं, जिन्होंने जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे उन्होंने देखा होगा, सुना होगा, रुड़की में एक सेंटर है, सेंट्रल रिसर्च बिल्डिंग इंस्टीट्यूट, जहां पर बहुत सारी बिल्डिंग बनाने की आधुनिक, जो भी आधुनिक विज्ञान की रिसर्चेज हो रही हैं उनका प्रयोग बिल्डिंग्स में किया जा रहा है, जल्दी से जल्दी, मजबूत से मजबूत कैसे किया जाए। तो ये सब चीजें और रिफाइन होके हम सबके काम आएंगी। ये विज्ञान सारा का सारा, जैसे बाबा कहते हैं कि अभी तो विज्ञान भी इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है, और जब ये संपूर्ण होगा तो संपूर्ण आत्माओं के ही काम आएगा। संपूर्ण विज्ञान अपूर्ण आत्माओं के काम नहीं आ सकता, उन्हें वो सुख नहीं दे सकेगा। तो हम सब जैसे जैसे संपूर्ण बनेंगे, ये संपूर्ण विज्ञान के संपूर्ण सुखों के साधन हमारे लिए उपलब्ध होंगे। इसलिए महल बनाने में भी कोई बहुत समय नहीं लगेगा। कई सोचते हैं ना कि आज एक बिल्डिंग बनाने में भी 2-4 साल लग जाते हैं और सारी दुनिया सोने की बने तो कितने साल चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होगी। सब साधन तैयार होंगे और विज्ञान के साधन बहुत अधिक मदद करेंगे हम सबको, तो वो भी सहज रूप से हम सबके लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरह हम सबको मनसा सेवा पर, अर्थात मनसा सेवा को दूसरे शब्दों में अगर केवल योग अभ्यास कहें, बहुत अधिक योग अभ्यास पर अपने वर्तमान समय जीवन में ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। और प्रश्न आप पूछो, आप परम धाम कहाँ है? इनका प्रश्न है वे परम धाम कहाँ है। वैसे तो कोई चीज कहाँ होती है वहां अगर जाके देखाया जाए तो अच्छा रहता है। का मतलब यही है ना कि अमेरिका की तरफ है या इंडिया की तरफ, यही है ना। यही प्रश्न को लेके सब लोग प्रश्न पूछते हैं। ये वास्तव में ये चीज इतनी विशाल है, आप परम धाम की बात छोड़ो, ये अंतरिक्ष अपना आकाश मंडल ही इतना विशाल है कि इसके लिए कोई भी दिशा निर्धारित नहीं की जा सकती है। और अगर आप पृथ्वी से थोड़ा सा हट जाएं, अलग हो जाएं, तो दिशाएं रहती ही नहीं है। तो दिशाएं ये बहुत लिमिटेड चीजें हैं, बहुत सीमित चीजें हैं। जब हम यहाँ बैठे हैं तो हम कहते हैं इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ये ऊपर है, नीचे है, पर इससे जरा सा हट जाएं तो ऊपर नीचे ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं रहता है। ऐसे ही ये सभी लोक ये इतने विशाल हैं, इतने बेहद हैं कि इसके लिए वास्तव में ये प्रश्न नहीं रहता है। अभी आप देखें इतने बड़े इस अंतरिक्ष में हमारी धरती का प्रमाण कितना होगा, राई से भी छोटा, उसमें भारत और अमेरिका, उसका कितना महत्व रह जाता है। तो ये प्रश्न योग के संबंध में आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि योग एक स्मृति है। बाबा को आप परम धाम में याद कर रहे हैं, ये एक स्मृति है। और नेचुरल जब हम किसी को भी याद करते हैं तो थोड़े समय के बाद वो स्थान हमसे खत्म। स्मृति में कोई विशेष महत्व है? वो तो बाबा भी इसलिए कहते हैं कि हमारे संकल्प, हमारी कॉन्शियसनेस यहाँ से परे हो जाए, इसलिए परम धाम में बाबा ने याद करने के लिए कहा है। बाकी दिशा अमेरिका वाले जरूर अपने सिर के ऊपर ही परमधाम समझते हैं और वो वहीं याद करते होंगे। बाकी अगर आप परमधाम में पहुंच जाएं तो आपके लिए अमेरिका और भारत एक ही डायरेक्शन में होंगे, है ना। सूक्ष्म वतन में अगर आप जाएंगे एक ही डायरेक्शन में होंगे। बोलो, सतयुग में इन सभी पशु पक्षी या प्रकृति सभी प्रभावित हैं मनुष्य आत्माओं से, जैसी मनुष्य आत्माएं वैसे ही सब कुछ, क्योंकि जिनकी अपनी लोअर कैटेगरी है। यहाँ भी आप देखें कि जब बाबा आते हैं तो बाबा क्योंकि ऑलमाइटी है, उसके वाइब्रेशंस हम सब के ऊपर छा जाते हैं। उस टाइम हाल में जितने भी बैठे होते हैं सब उन वाइब्रेशंस के अंदर वैसा ही अनुभव करने लगते हैं। दो व्यक्ति भी होंगे, एक पावरफुल एक वीक, तो जो पावरफुल है उसके वाइब्रेशंस उस कमजोर व्यक्ति को प्रभावित करते रहेंगे। वैसे ही मनुष्य आत्माएं क्योंकि अधिक शक्तिशाली हैं, मन बुद्धि में अधिक योग्य हैं जानवरों से, इसलिए मनुष्य का प्योरिफिकेशन, मनुष्य आत्मा के पवित्र वाइब्रेशंस इन सब चीजों के भी आधार बन जाते हैं। बस इन्हीं आधारों पे जानवर और प्रकृति सबके कार्य चलते हैं। बाकी जो लोग ये पूछते हैं कि शरीर छोड़कर पशु पक्षी कहाँ जाएंगे, परमधाम उनके लिए कहाँ है, तो बाबा ने वास्तव में इन प्रश्नों का उत्तर कहीं दिया नहीं है, लेकिन सोच तो ऐसा ही सकते हैं कि परमधाम जब आत्माओं का स्थान है तो सब आत्माओं को वहीं जाना चाहिए, है, और कहीं तो जाना नहीं चाहिए, यहाँ तो रहेंगे नहीं। तो इस प्रश्न को भी बाबा ने तो बहुत सीधा, बाबा से भी ये बात पूछते थे लोग क्योंकि ये एक ऐसा ही प्रश्न है, तो बाबा, तो बाबा का उत्तर तो आपको मालूम है, मालूम है ना। बाबा कहते बच्चे पहले अपने आत्मा के बारे में जानो। बाबा कहते मैं जानवरों का ज्ञान थोड़ा ही देने आया हूँ, मैं तो मनुष्य आत्माओं का पिता हूँ। ये भी किसी ने प्रश्न किया था कि जानवरों का पिता भी कोई है क्या। वो तो जब जानवरों को ज्ञान दिया जाएगा तो वो बताएगा उनका पिता आके। बाकी अभी तो आत्माओं का ही पिता है, मनुष्य आत्माओं का, और उसने हम सबको ये ही ज्ञान दिया है कि मैं तुम आत्माओं का ही पिता हूँ। और ये भी एक प्रश्न था कि जैसे मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में जाती है तो जानवरों की आत्माएं भी अपनी ही योनियों में पुनर्जन्म लेंगी क्या। तो ये भी बात स्पष्ट ही है कि आत्मा अविनाशी है, उसके संस्कार भी अविनाशी हैं, तो जन्म उसी योनि में होगा, परिवर्तन नहीं होगा। और नहीं, श्री कृष्ण का जन्म विनाश से पहले नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण के जन्म के लिए एक बात और जो बाबा ने एक बार बताई है, अव्यक्त बाबा ने, उससे भी ये बात स्पष्ट हो जाती है। और वैसे भी उसका जन्म तभी होगा जब यहाँ की विशाल हलचलें सब शांत हो चुकी होंगी। बाबा ने एक बार सुनाया था 74 में, वो किताब में भी छपा हुआ है, आप में से किसी को ख्याल हो तो, जो ये दिखाया है कि श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर बैठकर अंगूठा चूसता हुआ है, उसका रहस्य क्या है। तो बाबा ने कहा कि विनाश में जब चारों ओर जल ही जल हो जाएगा, तो ऊपर से अगर देखा जाए तो भारत का जो रूप है अभी भी पीपल के पत्ते जैसा है ना, उधर से नोकीला और इधर से पत्ते की तरह बना हुआ। तो बाबा ने कहा चारों ओर पानी पानी होगा, और अगर ऊपर से देखा जाए तो ऐसा लगेगा सागर पे कोई पत्ता तैर रहा है, है ऊपर से अगर देखा जाए। तो बाबा ने कहा था कि उस टाइम श्री कृष्ण की आत्मा उतरेगी ऊपर से, और बाबा ने कहा इतना ज्यादा प्रकाश होगा उसमें कि एकदम से जो भी यहाँ रहने वाले होंगे उन सबको ये आभास हो जाएगा कि सतयुग का फर्स्ट प्रिंस जन्म ले चुका है। तो विनाश जब लगभग समाप्ति पर होगा तब वो आत्माएं यहाँ आएंगी। हाँ, पहले परमधाम में जाएगी, क्योंकि जब तक परमधाम में न जाए तो ये सारा ज्ञान रहे उसको, परमधाम में जाके सारा का सारा ज्ञान मर्ज हो जाता है, और फिर वो आत्मा नीचे फ्रेश उतर के, जैसे वो कुछ नहीं जानती है केवल जो सीखा है उसका रूप ही है, तब नीचे उतर आती हैं। हाँ, ब्राह्मण आत्माएं कुछ तो ऊपर जा चुकी होंगी, और अगर कोई बचेगा भी तो वो इतना दूर दूर होगा कि आपस में मिलना इतना सहज नहीं होगा। अब यही सोचते हैं ना कि श्री कृष्ण को ज्ञान सुनाए जाके, ऐसा संभव नहीं होगा। तो इनकी यही इच्छा है कि श्री कृष्ण को भी तो कोई ज्ञान दे, लेकिन इतने ज्ञान लेने वाला बड़ा होगा, इतने तो सभी ब्राह्मण लगभग जा चुके होंगे, क्योंकि विनाश में इतना दूर दूर आत्माएं मनुष्य बचेंगे और ये सब कम्युनिकेशन के साधन तो समाप्त हो ही चुके होंगे, तो वैसे तो ऐसा ही लगेगा कि जो जहां जिंदा होगा उसे यही लगेगा कि बस हम ही हैं थोड़े से, बाकी सब नष्ट हो चुके हैं। बोल और, तो आप क्या समझते हैं भाई? इनका प्रश्न है कि अपने आप को आत्मा कैसे समझो जब देखने में नहीं आता। ठीक बात है, इनका प्रश्न ठीक है। देखिए, बहुत सारी चीज तो देखने में आती नहीं, लेकिन हम समझ लेते हैं। अब यहाँ आप बैठे हैं, हवा भी आपको दिख नहीं रही, फिर भी आप समझते हैं हवा तो है ही, बहुत सारी चीजें। हाँ, ऐसे ही किसी भी चीज के अनुभव के लिए पहले उसका ज्ञान होता है। हमें ज्ञान है कि यहाँ हवा है, ऐसे ही अब बाबा ने हमें ज्ञान दिया कि हम आत्मा है, जिस चीज को हम भूल गए थे। तो एक उसका चिंतन जैसे जैसे हम करेंगे और जैसे जैसे हमारा मन ये स्वीकार करेगा कि मैं ही हूँ आत्मा, आत्मा है ऐसा नहीं, मैं ही हूँ वो जिसका मैं चिंतन कर रहा हूँ, तो ये अनुभव सहज होने लगेगा। अभ्यास करें फिर आप ही इसका उत्तर दे सकेंगे। हाँ, मैं ये जो 83 और 84 जन्म की बात है, ये बाबा ने स्पष्ट कर दी है। बैठिए, कि जैसे जब ममा ने भी शरीर छोड़ा और दूसरा लिया, तो ममा के बारे में भी यही प्रश्न लोगों के मन में उठता था कि भाई उनके 83 जन्म थे, क्या अभी 84वां हुआ है क्या? तो 84 जन्म तो बाबा ने एक सामूहिक रूप से हम सबके बताए हैं, जिसमें बाबा ने ये कहा कि 63 शरीर हमको मिलते हैं और एक जन्म है एक शरीर में एक्स्ट्रा, ऐसा ही है ना? जन्म शरीर 83 और जन्म 84, तो एक जन्म है हमारा ये अलौकिक। तो बाबा ने अभी अभी 1-2 साल पहले ये बात बताई थी कि उन आत्माओं के एक जन्म के ये दो पार्ट हैं, एक जन्म के दो पार्ट, उस रूप में भी वो अलौकिक सेवा कर रहे हैं और चाहे यहाँ अलौकिक सेवा कर, इसलिए ये अलौकिक जन्म एक ही गिना जाता है, गिनती इसकी एक ही की जाएगी, दो नहीं। वही प्रश्न है, जानकी दादी ने कहा था ऐसा समय आएगा कि ज्ञान देने की जो समय नहीं मिलेगा, 3 मिनट में कोर्स कराना पड़ेगा, तो कैसे? बल्कि बाबा तो इससे भी आगे ले आए हैं कि 1 सेकंड में कोर्स देना पड़ेगा, और वो तब होगा जब 1 सेकंड में सारे कोर्स का मतलब क्या है? आत्मा समझा देना और किसके हो, मैं कौन और किसका, और अगर हमें लंबे समय का ये स्पष्ट अनुभव होगा कि मैं आत्मा हूँ और बाबा की याद का स्पष्ट अनुभव, तो 1 सेकंड में, सुनो, 1 सेकंड में अपनी दृष्टि के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा, अपने बोल के द्वारा 1 सेकंड में दूसरों को ये अनुभव हो जाएगा कि हम इस देह से अलग हैं और हम किसके हैं। तो ये निर्भर करेगा, जिसका भी ये प्रश्न है वो बहुत अच्छा योग करे, जो वो 1 सेकंड में अशरीरी हो जाए। जितने सेकंड आपको लगेंगे अशरीरी होने में, उतने ही सेकंड उन्हें लगेंगे। जानवरों के प्रश्न बहुत हैं भाई, जानवरों की आत्मा है पवित्र है या पतित? तो गाय भैंस का दूध, समझ ही गए आप आगे, जानवरों की आत्मा पवित्र है या पतित? तो गाय भैंस का दूध पतित हुआ या पावन, क्या कहेंगे आप? पतित हुआ ना, तो नहीं पीना चाहिए। तो इसके लिए आप यही करें कि जब दूध को उबालें तो इतना योग युक्त होकर पिए, इतना योग युक्त होकर पिए कि पावन हो जाए, ठीक है? इतना ही क्यों, इतना ही क्यों, जो कुछ हमें भोजन मिल रहा है वो सारा ही पतित है। जिन्होंने वो बोया, जिन्होंने बीज डाला, खाद डाला, पानी डाला, वो सब कहाँ पावन है। लेकिन इसीलिए बाबा ने कहा कि भोजन बनाना और खाना जितना योग युक्त होगा उतना भोजन पावन बनेगा, तुम पे इफेक्ट नहीं करेगा, सब कुछ पतित है। लोग भी पूछते हैं ना, ये प्रश्न पूछते होंगे आपसे कि आप दूध क्यों पीते हो, इसीलिए प्रश्न पूछा ना कि जब तुम खाना नहीं खाते तो दूध क्यों पीते हो। तो उसको हम अपने योग के द्वारा पावन बनाएं,
आप उनको यही समझाओ। कई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो अनेक बातें पूछते हैं, ये क्यों नहीं खाते, ये क्यों खाते हैं, कहीं गुड़ खा लेते हो, पेड़े खाते नहीं हो, हैं? भाई गुड़ भी बनता है, वो रस से बनता है और पेड़े दूध से बनते हैं, बनाने की प्रतिक्रिया एक ही है, तो वो खा लेते हो, वो नहीं खाते हो, हैं? ऐसे प्रश्न होते हैं। तो इसमें जहां तक हमारे लिए संभव है अधिक से अधिक, और जहां तक हम योग बल के द्वारा उन चीजों को पवित्र कर सकते हैं वहीं तक किया जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि खेती भी हम ही अपनी करें। अच्छा ये बताए,
एक और भी एक बाबा ने कहा है ना कि परमधाम का दरवाजा एक ही बार खुलता है, तो सारे कल्प में फिर आदमी वापस नहीं जाता।
अब हम इन प्रश्नों का सार आप सबको सुना देते हैं। आने बिंदु रूप क्या है, ठीक है, ठीक है ना, इसमें सब प्रश्न आ जाएंगे, बिंदु लग जाएगा सब प्रश्नों को। आप नहीं, सबको ही पता लग जाएगा, सब आत्माओं को, चाहे किसी भी तरह से सबको एक बार ये फीलिंग हो जाएगी कि भगवान आया हुआ है। सबको, जितने भी धर्मों की सब आत्माएं हैं, सबको ये सब स्पष्ट फीलिंग, किसी को साक्षात्कार, अभी आपको उस चीज की कम कल्पना है, किसी को भी नहीं है हम में से, जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्षता। प्रत्यक्षता का स्वरूप बहुत विशाल होता है, जैसे आज भी आप देखें ना, हाँ देखो भाई, कहते हैं दादी जैसे आप रोड से आती है तो हम सबको पता लग जाता है, जैसे आपने देखा इंदिरा गांधी को गोली लगी, सारी दुनिया में कितनी जल्दी पता लगा, वो तो एक चलो स्थूल चीज है, आप कहेंगे बहुत लोगों को पता भी नहीं चला होगा, लेकिन इस पता चलने के कई साधन होंगे। एक तो प्रत्यक्षता का स्वरूप इतना विशाल होगा, इतना विशाल होगा कि हर व्यक्ति उससे प्रभावित होगा, और दूसरा कुछ लोगों को स्वप्नों में, कुछ लोगों को साक्षात्कार के रूप में, और कुछ लोगों को अपनी स्वतः की ही फीलिंग इस तरह की होगी, क्योंकि ये सबका एक तरह से अधिकार है। इतना अधिकार भगवान के ऊपर सबका है वर्षे का, कि उनको कम से कम ये पता लगेगा कि वो आया था। तो बिंदु रूप की बात, बिंदु रूप का अर्थ है हम आत्माएं अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित हो जाएं। हमारा यथार्थ स्वरूप क्या है, वर्तमान आदि की बात तो हम पीछे लें। जब हम आत्माएं अपने संकल्पों को समेट लेते हैं, वर्तमान में अभ्यास की हम बात कर रहे हैं, जब आत्मा संकल्पों के प्रभाव से मुक्त हो जाती है, जब उसे ये लगता है कि अब मन के अंदर संकल्प नहीं है, हालांकि ये भी संकल्प है, इसलिए उसको सब दिया जाता है, जब आत्मा एक संकल्प में स्थित हो जाती है कि मैं आत्मा हूँ, इतना ही संकल्प, बाकी सब संकल्पों का प्रभाव जब समाप्त हो जाता है, और आगे दूसरी बात, ऐसा संकल्पों का प्रभाव समाप्त करके जब आत्मा बाबा के पास चली जाती है, अर्थात सरल शब्दों में कहें कि मन में एक संकल्प बाबा और बुद्धि में उसका ही स्वरूप, जिसको हम कहें दर्शन, तो जब हमारा चिंतन और दर्शन एक बाबा पर स्थिर हो जाए, उसको कहते हैं बिंदु रूप स्थिति का अभ्यास, जिसके द्वारा आत्मा की सभी क्वालिटीज, सारे ही आत्मा के गुण उसको एक ही साथ अनुभव में आ जाते हैं। एक एक क्वालिटी को, एक एक गुण को अलग अलग अनुभव करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरे शब्दों में कहें कि बाबा के सारे गुण आत्मा में समावेश करने लगते हैं। तो ये है बिंदु रूप का अभ्यास। इसके लिए मैं आपको एक सरल सी बात और बताऊं, प्राचीन काल से भी चली आ रही है, मनोविज्ञान में एक सिद्धांत चलाता है कि एकाग्रता के लिए ध्यान की जरूरत है। लौकिक में भी अगर किसी को एकाग्रता नहीं होती हो ना, वैसे भी पढ़ाई में, कामकाज में लोगों को एकाग्रता नहीं होती, तो सन्यासी लोग उनको ध्यान सिखाया करते थे कि भाई तुम किसी एक चीज पे ध्यान करो, अच्छा परमात्मा का कोई रूप दे दिया, विष्णु पे करो या बिंदु पे, ज्योति पे, कहीं भी करो। ऐसे ही हम इस एकाग्रता को बढ़ाने के लिए अगर दो चीजों का अभ्यास करें, एक स्वयं का दर्शन यानी अपने स्वरूप पर एकाग्र हो जाओ, और ऐसे ही बाबा का दर्शन। सरल शब्दों में हम कहें कि हम चलते फिरते काम काज करते या अभ्यास करने लगे कि जैसे मैं आत्मा बाबा को देख ही रही हूं और देखते ही रहो, इससे आप देखेंगे एकाग्रता कितनी बढ़ती है, बिंदु रूप का अभ्यास कितना सहज होगा और मन स्वतः ही शांत स्थिति में बना रहेगा। तो इस तरह का अभ्यास बिंदु रूप स्थिति को बहुत बढ़ाएगा और इसकी जरूरत है। बाकी किसी का ये भी प्रश्न है, इन प्रश्नों के साथ वीआईपीज की सर्विस कैसे की जाए, कैसे के तो बहुत तरीके हैं, जैसा व्यक्ति हो वैसी सेवा, लेकिन हम तभी जान पाते हैं दूसरे की सेवा करना। सेवा की सफलता एक बात पे निर्भर है, आप जानते ही हैं कि जो वो व्यक्ति चाहता है वो ही हम उसको सुना रहे हों, तो होगा तुरंत परिणाम। मान लो उस व्यक्ति का ब्रह्मचर्य में इंटरेस्ट है बचपन से, और अगर हम अब उसको ब्रह्मचर्य की बात सुनाएंगे तो उसको अच्छा लगेगा। किसी का मान लो ब्रह्मचर्य में इंटरेस्ट नहीं है और हम उसे कह दें कि पवित्र बनना है तो वो सुन तो लेगा लेकिन हाथ जोड़ेगा पीछे। ऐसे ही किसी का योग में रुचि है, उसको हम योग की बात सुनाएं, तो जैसा दूसरा चाहता है वैसे बोल अगर हमारे मुख से निकले तो सफलता होगी। परंतु ये कैसे होगा? ये होगा हमारी सुंदर स्थिति से। जब हमारी अच्छी स्थिति होती है तो हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता क्या है, उसकी अपनी मेंटेलिटी क्या है, उसके अपने विचार क्या हैं, बल्कि ऑटोमेटिक हमारे मुख से वो ही निकलता है जो उसको चाहिए। तो वीआईपीज की सफलता, सेवा में सफलता का आधार हम अपनी स्थिति को बनाएं। सारी ही सेवाओं की सफलता हमारी श्रेष्ठ स्थिति है। बिना श्रेष्ठ स्थिति की सेवाएं एक्चुअली खाली जा रही हैं, उसमें इतना बल नहीं भर रहा। इसलिए अंत में मैं आप सबको अनुभव से ये कह सकता हूँ कि आप अपने जीवन में केवल सर्विस कॉन्शियस नहीं बनना। सर्विस के पीछे भागते रहना वो सेवा नहीं है। असली सेवा क्या? सेवा हमारे पीछे भागे, और वो तब होगी जब हमारे में इतना रूहानी आकर्षण होगा। तो सर्विस कॉन्शियस नहीं केवल सेवा करनी है, ये तो है ही, लेकिन जितनी ऊंची स्थिति होगी स्थिति ही सेवा कराएगी। आप देखेंगे आप अपने घर में रहो ऑटोमेटिक सेवा आपके पास आएगी, और लौकिक परिवारों में भी ज्ञान सुनाने की ज्यादा कोशिश न करो। ऐसा नहीं कि सुनाओ भी नहीं, लेकिन परिवार वालों से डिबेट नहीं करनी चाहिए, उससे आपका इम्प्रेशन सदा खराब रहेगा। आप अपनी स्थिति में रहो, अपनी शेष धारणाओं का परिचय उन्हें दो, आप देखेंगे कि वही आपकी महिमा दूसरों को करेंगे। वही कहेंगे कि देखो हमारा लड़का ब्रह्मा कुमारियों के पास जाता है, इसमें कितना भारी चेंज आ गया है, और तब उनका आकर्षण आपकी ओर होगा। तो लौकिक परिवारों में ऐसा परिवर्तन हो, आपको यहाँ बताया भी होगा क्लासिक में कि किसी एक मुख्य बात में जो आपकी कोई मुख्य कमी रही हो जीवन में, जिसको आपका सारा समाज जानता हो, उसमें आप एक बहुत तेज परिवर्तन करके दिखाओ। सारा समाज ये देख ले कि ये बदल गए। बाकी सूक्ष्म पुरुषार्थ तो बाद की बात। मान लो आपको गुस्सा आता था, आप रूसते थे बचपन से, आप छोटी छोटी बात में झगड़ा कर लेते थे, उस एक चीज को छोड़ दो, ये सेवा का आधार बनेगा। क्योंकि अगर हम सेवा को योग से नहीं जोड़ते हैं तो सेवाओं में बहुत बड़ा आगे चल के हम नुकसान कर देते हैं एकता को तोड़ने का। और अगर किसी ने एकता तोड़ी तो हमें समझना चाहिए कि वो भगवान के कार्य में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है। अपने बाबा के महावाक सुने होंगे, हमने बाबा को सीधे समीप से बोलते हुए देखा है, जब बाबा ये कहता है कि बच्चे किसी भी कीमत पर तुम्हें कुछ सहन करना पड़े, कुछ त्याग करना पड़े, पीछे रहना पड़े, लेकिन तुम्हारे कारण संगठन न टूटे, तब बाबा की भावनाओं का पता लगता है कि कितनी बड़ी भावनाओं से बाबा ये बात कहता है। तो हमें भी अपने सारे ही पुरुषार्थ में ये बात देख लेनी चाहिए कि मेरे कारण, चाहे मेरा बोल हो या मेरी कोई धारणा हो, मेरी कोई गलती हो गई हो, संगठन पर इफेक्ट ना हो। संगठन की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, हम लोगों की प्रसिद्ध भी होती जा रही है संसार के सामने, और हमें प्रसिद्ध करना है उस चीज को। आपने सुना ही होगा कि अगला वर्ष हम लोग एकता वर्ष मनाने जा रहे हैं, अभी तक ऐसे ही विचार हैं। तो एकता पक्की हो हमारे अंदर, हमें त्याग करना पड़ेगा उसके लिए, अपने विचारों का त्याग करना पड़ेगा। कहीं हमें ये लगेगा कि हम तो ठीक हैं, फिर भी हम क्यों त्याग करें, जैसा कईयों का प्रश्न भी था चिटकी में कि हम ठीक होते हैं क्या करें, हम कैसे हम त्याग कर दें, नाराज हो जाएंगी बहनें हमसे। कई बातें इसमें हैं, कहीं बहनें नाराज हो गई, कहीं भाई, ये सब बातें बहुत छोटी हैं। इन चीजों को अपने जीवन का आधार नहीं बनाना चाहिए। हम त्याग कर दें तो त्याग से तेज बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, हमारी दिव्यता बढ़ेगी और संगठन मजबूत होगा। हमें कष्ट सहन करना पड़े, सेवाओं में कष्ट ना आए, हम कहीं पीछे रहें, हमारा नाम ना हो, बाबा का नाम हो जाए, ऐसी अपनी अंदर की भावना जागृत करनी है। बस ये इस भट्टी का आप लोग सार लेकर जाएं, और जो बात आते ही हमने कही आपको, जो हमारे जीवन का सार रही है, जब से हम समर्पित हुए हमने याद रखी ये बात कि हम यहाँ क्यों आए हैं। आप सबको इसलिए हम बार बार वो बात कहते हैं, जीवन का सार है उस बात में कि ये बात याद रहे, हम क्यों आए हैं बाबा के पास। बस वो ही करना है, जान देखें उससे थोड़ी सी विरोध हमारे सामने आ रहा है, अपने को ढंग से हटा लें। ये याद रखना चाहिए हमें कि जब हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो हमारी बुद्धि, हमारा मन, अगर इसमें हमने डिस्टरबेंस ला दिया तो बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ा नुकसान हमें होगा। एक दिन की बुद्धि डिस्टर्ब हुई कई दिन में ठीक होती है। बुद्धि का डिस्टरबेंस बुद्धि की एनर्जी को बहुत तेजी से नष्ट कर देता है, इसलिए किसी भी कारण से, इसलिए कहा जाता है, बाबा भी कहता है कि त्याग कर दो, त्याग करने में कोई एनर्जी नहीं जाएगी। अगर डिस्टर्ब हो गए तो एनर्जी बहुत नष्ट हो जाएगी और कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इस भट्टी से यही सब बातें अंतर्मुखी होकर अपनी चेकिंग होती रहे। बस अब ये रहा हुआ संगम का थोड़ा सा समय, बहुत उमंग है आप सबको हम सुनते हैं, बस उसमें ही बीते जो कुछ बाबा ने कहा है। अंतिम बाजी है, ये मिस होने के बाद दोबारा चांस नहीं मिलेगा, बाबा ने स्पष्ट कह दिया है कि एक मुरली है अभी लास्ट की, कि फिर कोई कहे कि बाबा हमें तो पता नहीं चला था, हमने तो ऐसे ही समझ लिया था, तो ऐसे नहीं चलेगा। बाबा के ये सब थे कि उस टाइम सोचो मैं आत्मा हूँ, ये नहीं चलेगा। लंबे समय का अभ्यास और लंबे समय को बाबा ने एक साल में बांध दिया, 50 साल में भी नहीं। तो ऐसी उमंगों के साथ आप अपनी भट्टी को पूर्ण करेंगे, नयों को वैसे ही अधिक उमंग होता है। बस यही है कि अपनी उमंगों को ठीक दिशा देते रहना, उमंगों को गलत दिशा न मिले। और मैं अपने जीवन में हमेशा पहले से ही एक बात याद रखता आया हूँ, चाणक्य नीति की है, हालांकि बाबा ने दूसरे शब्दों में रोज कही है, संग दोष से बचना, और मैं उसको इस रूप से कहता रहता हूँ कि ऐसे आत्माओं से, ऐसे व्यक्तियों से अपनी दोस्ती कभी नहीं करना जिनको बहुत कम बुद्धि हो। चाणक्य ने कहा था कि मूर्खों की दोस्ती बुद्धिमान व्यक्ति से शत्रुता अच्छी है मुकाबलेवश मूर्खों की दोस्ती के। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि मूर्ख की दोस्ती सदा ही आपको मझधार में रखेगी, और एक समझदार दुश्मन होगा वो समझदारी से काम लेगा फिर भी। इसलिए जो बाबा ने बार बार कहा है संग दोष, जो कुमार जीवन में किसी भी जीवन में मनुष्य की दिशाओं को बदल देता है, उससे दूर रहना। चिंतन का काफी मसाला आप सबको मिला है, चिंतनशील रहना, मगन रहना और इन्हीं बातों के चिंतन में रहना लंबा समय। ये नोट करना कि जो चली आ रही बात है, क्या चली आ रही बात है, सब कहते हैं यहाँ से जाते हैं थोड़े दिन, इस बात को खत्म कर दो। अब ये कहें कि यहाँ से गए अवतार बनकर गए, दूसरों को बनाने गए, नशा उतरना क्यों? ये भाषा ही गलत है कि यहाँ आए थे बैटरी चार्ज करने, जब डिस्चार्ज हो जाएगी फिर आएंगे। क्यों डिस्चार्ज हो जाएगी? पहले से ही ऐसी प्लानिंग क्यों कि ठीक है उधर डिस्चार्ज होती है इधर चार्ज। तो इस एक कहावत को जो ब्राह्मण परिवार में ये कहावत चली आ रही है, आप लोग बदल के दिखा दो कि नहीं, जैसी चार्ज होकर गए हैं जो चिंतन यहाँ है, अब आज रात तक आप ये चिंतन और कर लेना कि जो चिंतन हमें यहाँ है वही चिंतन अगर वहां रहेगा तो वही स्थिति वहां रहेगी जो स्थिति यहाँ है। बात केवल चिंतन की है, इस चिंतन को मोड़ने वाली जो जो चीजें आई उन सब को जो ज्ञान खजाना मिला है उसके द्वारा नष्ट करना। ओम शांति।